राम राम हरे हरे जय जय श्री चेतन जय नित्यानंद जय जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चेतन जय नित्यानंद जय जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चेतन जय नित्यानंद जय जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद उपाय गौर सुंदर की प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर स्कॉन कोलकाता की ओर से आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जनार्दन शरण प्रभु और परिवार का। अपने घर में हम सबको सत्संग के लिए अवसर दिया है और हमारा हावड़ा का प्रचारक क्या सुविग्रह गोविंदा केशव माधव सुविग्रह लोकेश लोकेश्वर महादेव लोकेश्वर माधव लोकेश्वर माधव प्रभु हावड़ा। तो आप तीन नाम मैंने लिए, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊं तो सात नाम लेने हैं मेरे को, चार और प्रचारक बढ़ने चाहिए। राजकुमार अभी अभी कठे मत करो, चार और बढ़ाना। हरे कृष्ण बोले यार, हरे हरि बोल। तो अपन एक बात के ऊपर ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण ने प्रवचन किया अर्जुन को, अकेले एक को सामने खड़ा करके गीता बताया। आश्चर्य नहीं लगता है एक ही दुनिया में आदमी भगवान ने चुना गीता बताने के लिए, और सत्रह अक्षौणी सेना एक तरफ खड़ी थी जिसमें भीष्म पिता जैसा महाभागवत खड़ा था, वो तो बारह महाजनों में एक महाजन खड़ा था एक तरफ, वो गुरुजन खड़े थे कृपा, और दूसरे तरफ भी बहुत बड़े महारथी खड़े थे, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज साक्षात खड़ा था। सत्रह अक्षौणी एक तरफ और कितनी पांडवों की कितनी सेना थी, ग्यारह अक्षौणी, सत्रह और ग्यारह थी ऐसे कुछ। उसमें एक ही आदमी को चुना भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश देने के लिए, कितना भाग्यशाली अर्जुन रहा होगा, आश्चर्य नहीं लगता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक रूप गोस्वामी को चुन के और दस दिन बैठ के उपदेश दिया एक जगह के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण ने तो सवा घंटा भी नहीं लिया, गीता का अठारह अध्याय सुना के अर्जुन को तो काम में लगा दिया। लेकिन अब कलयुग जो आ गया, कलयुग में लोगों को समझने में थोड़ी बहुत देर लगती है, तब तो एक घंटे में गीता अर्जुन समझ गया और भगवान ने जैसे कहा वैसे काम कर भी दिया। लेकिन रूप गोस्वामी तो राजपाट सब छोड़ के बनारस में जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो दस दिन के लिए महाप्रभु ने उनको बिठा के एकांत के स्थान में, कोई आदमी भीड़ में परेशान न करे, दश अश्वमेध घाट के स्थान के ऊपर आके बैठे और दस दिन अकेले को बैठ के भक्ति रस बिंदु, भक्ति रस बिंदु, भक्ति के रस का एक बिंदु शिक्षा के रूप में दिया। कितना महान रूप गोस्वामी रहे होंगे जो एक ही साक्षात श्री कृष्ण के सामने बैठकर चैतन्य महाप्रभु के बैठ के दस दिन श्रवण किया है भक्ति रस बिंदु का। अब जरा विचार कीजिए कितने भाग्यशाली वो रहे होंगे लोग जो भगवान के इतने निकट में रहे हैं। अब ये श्लोक हमने पढ़ा था, नमो महावदन्नाय, ये रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को वहीं दश अश्वमेध घाट में जब बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तब ये उनके मुख से चैतन्य महाप्रभु की महिमा में श्लोक निकला था कि आप दयालु हैं। महावदन्ना है, दान देने वाले बहुत है लेकिन आप बहुत बड़े दानी हो, कृष्ण प्रेम दे रहे हो, कोई नहीं देता है दुनिया में कृष्ण प्रेम। तो ये शिक्षा जो उन्होंने दी है उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान इसलिए देंगे कि हमें पता लगना चाहिए कि हम जो काम करने हैं कृष्ण भक्ति ये कितना महत्वपूर्ण है। पहले हमको ये समझना चाहिए जो आप कर रहे हैं कृष्ण भक्ति ये कितना महत्वपूर्ण है। जब आदमी को पता लगेगा जो चीज मेरे पास है वो बहुमूल्य है तो उसका उसका बहुत उसको एक तो उसका उसका भावनाएं अच्छी रहे हो जाएंगी उसके प्रति, और उसको गौरव होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं ये बहुत दुर्लभ है। तो पहले अपन 10 मिनट में ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि जो आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो महाप्रभु श्री चैतन्य रूप गोस्वामी से मिले और रूप गोस्वामी को साथ लेकर वल्लभ भट्ट के घर पे भोजन करने के लिए गए, जो वल्लभ आचार्य के नाम से इस वक्त पुष्टि मार्ग के आचार्य विष्णु स्वामी की संप्रदाय के गुरु के रूप में माने जाते हैं, श्री वल्लभ आचार्य जिसकी 64 जगहों पे बैठ के उनकी भी बनी हुई है जहां उन्होंने भागवत की थी। जानते हैं वल्लभ आचार्य से हम परिचित हैं, उन्होंने वो गृहस्थी थे, उन्होंने अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया था, रूप गोस्वामी साथ गए थे। वहां भी रघुपति उपाध्याय से मिले थे चैतन्य महाप्रभु, तब रूप गोस्वामी ने सुना था कि महाप्रभु कैसे प्रश्न पूछे हैं, क्या सुंदर उत्तर उन्होंने दिए, ये बड़ा सुंदर सुना था। तो पहले इनडायरेक्टली शिक्षा दी है, दूसरे से बात करके फिर डायरेक्टली शिक्षा दे रहे हैं। जब डायरेक्टली शिक्षा दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण। ब्रह्मांड किसको कहते हैं, जिसमें एक ब्रह्मा जिसकी रचना ब्रह्मा करे वो ब्रह्मांड, अंड अंडा जिसमें ब्रह्मा सारी रचना करे वो एक ब्रह्मांड हो गया। तो ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड आते कहां से, ये भौतिक जगत है ना, ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये भौतिक जगत है, ये तो एक चौथाई हिस्सा है, तीन हिस्सा आध्यात्मिक जगत है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में पहले भौतिक जगत के ऊपर एक पर्दा चढ़ा हुआ है, ढका हुआ है, उसके बाद एक नदी बहती है उसका नाम है ब्रजा, उसमें भगवान महाविष्णु शयन जब करते हैं तो उसके रोम कूप से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है, जैसे हमारे शरीर के रोम कूप से पसीना निकलता है ना। अभी तो हावड़ा में पसीने के दिन आ रहे हैं, जाते हुए पसीना निकलता है ना, कितना पसीने की बूंदे गिन सकते हो कितने निकलते हैं। एक आदमी चौड़ा बाजार में पैदल चले 14 मिनट कितना पसीना निकलेगा, गिन सकते हो कितनी बूंदे निकलती है, नहीं गिन सकते ना। ऐसे महाविष्णु जब शयन करते हैं कारण सागर में तो उनके एक एक जो 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 त्वचा के अंदर एक एक सौराख है पोर है उससे एक ब्रह्मांड निकलता है, और नदी के अंदर ब्रह्मांड ऐसे तैर रहे हैं जैसे जैसे गेंद होना, या आपके यहां गंगा के अंदर गेंद फेंक दो तो तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे कई ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं वह। एक ब्रह्मांड छोटा सा पहले इतना निकलता है जितना पसीने की बूंद होती है इतना, मतलब मटर के दाने जितना, फिर एकदम ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है। एक पसीने में कितने जीव होते हैं मालूम है, एक पसीना एक बूंद पसीना है उसको डॉक्टर के पास भेजे चकास में तो उसके अंदर असंख्य कीटाणु मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने लिविंग एंटिटीज उसके अंदर होते हैं एक ड्रॉप स्वीट के अंदर असंख्य। हमारे पसीने में लाखों लाखों जीव होते हैं कीटाणु मालूम है ना, तभी तो खान खारिज होने लगते हैं थोड़ी देर के बाद, वो अपना काम दिखाते हैं। ऐसे भगवान के एक ब्रह्मांड के असंख्य जीव होते हैं, जीवात्मा है, ये भी तो जीवात्माएं होती है ना, जो कीटाणु ये भी तो जीवात्मा है ना, तो ऐसे वो ब्रह्मांड के अंदर उतने जीवात्माएं निकलती, तो ऐसे कई ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड ये है जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे और कई ब्रह्मांड है। भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी मिलने आए थे, बोला मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, तो भगवान ने पूछा पूछो कौन सा ब्रह्मा, बोला कौन सा ब्रह्मा, ये कोई बात है, मैं ब्रह्मा चार माथे वाला। अंदर भगवान श्री कृष्ण बोला अच्छा ये ब्रह्मा जी को समझता है मैं अकेला ही ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी जब अंदर गया तो भगवान ने और लोगों से ब्रह्मा को मिलाया, कोई 8 सर वाला और कोई 100 सर वाला और कोई 500 सर वाला, और कोई नहीं देखा, ब्रह्मा जी देखता है, ये तो मैं सिर्फ छोटा सा ब्रह्मा, ये तो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मा है। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड ये नहीं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और उनमें कई जीव है ऐसे घूम रहे हैं। वो सारे ब्रह्मांड भौतिक जगत में, ब्रह्मा तो भौतिक जगत में आता है तब ना सृष्टि होती है, तभी तो ब्रह्मा होता है, नहीं तो ब्रह्मा की जरूरत क्या है, वो तो सृष्टि करने के लिए है, तो सृष्टि भौतिक सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को आना पड़ता है तब ब्रह्मांड बनता है। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और उसमें असंख्य जीव है। अब उसके बाद महाप्रभु जी दूसरी कहते हैं 84 लाख योनिते करे भ्रमण, जीव असंख्य है लेकिन 84 लाख योनियों में बांटे जा सकते हैं। तो ये कभी धरती के ऊपर जीव ऐसे नहीं है, चंद्रलोक में भी जीव है तो सूर्यलोक में भी जीव है, सूर्यलोक में जीव सूर्य के रस के रथ के ऊपर 70,000 वाल्कल्य ऋषि बैठ के जाते हैं, वाल्कल्य नाम के ऋषि हैं, इसलिए जगह नहीं होती है। हनुमान जी को एक साल के लिए शिक्षा देनी लेनी थी सूर्य देव से, तो उसने कहा रथ के ऊपर जगह नहीं है, इतने ऋषि इसके ऊपर पहले बैठते हैं, तो बोला मैं पैदल चलूंगा, आपकी तरफ मुंह करके चलूंगा शिक्षा लेने के लिए। एक साल पूरा शिक्षा ली थी हनुमान ने भगवान सूर्यदेव सूर्य नारायण से, और गुरु दक्षिणा में सूर्य नारायण ने कहा था मेरा बेटा सुग्रीव है, तुमको हंस की हर हाल में रक्षा करनी, सुग्रीव सूर्य पुत्र है, वो गुरु दक्षिणा में मांग लिया था, इसलिए कभी भी हनुमान ने सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा रक्षा की। तो सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं ये कहने का अर्थ है। प्रभुपाद ये सारा भावत इसके ऊपर है कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि और जीव कहां रहते हैं, और जीव पूरे ब्रह्मांडों में जीव रहते हैं, तो इतने सारे जीव रहते हैं जगह कहां होगी, तब कहते हैं एक जीव कितना छोटा होता है। इसके बाद महाप्रभु कहते हैं एक जीव कितना छोटा होता है, केशाग्र शतेक भाग पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी, एक बाल की चोटी के 1,000 टुकड़े करो, फिर उस टुकड़े के 1,000 टुकड़े करो, मतलब एक बाल के अगर भाग के 10,000 टुकड़े से छोटा जीव होता है, और हाथी में भी वो जीव है और चींटी में भी वो जीव है और मच्छर में भी उतना ही जीव है और कीटाणु में भी उतना ही जीव है। तो जीव की साइज बड़ी छोटी नहीं है, शरीर की साइज बड़ी छोटी, तो जीव कितने हैं, छोटे से है जीव लेकिन इतने बड़े शरीर को चला सकते हैं। हाथी के शरीर को भी एक ही जीव चला रहा है, वो छोटा सा और चुनटी को। उसके बाद महाप्रभु कहते हैं तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, ये जीव जो होते हैं ना उनमें कुछ तो चल सकते हैं कुछ चल नहीं सकते, जैसे पेड़ आदि चल नहीं सकते बेचारे, एक जगह खड़े रहते हैं, कितना मुश्किल है। अगर आपको कहे कि आप घर से बाहर नहीं निकले तो पागल हो जाएंगे, नहीं इस सोफे के ऊपर से उठना नहीं है, कितना पागल हो जाए आदमी, लेकिन वो पेड़ कई सालों से एक जगह खड़े हैं, कितना मुश्किल है एक जगह खड़ा होना जीव बनकर, बहुत मुश्किल है। तो उसमें जो दो भेद है, जंगमय त्रियक जल स्थाचर स्थलचर विभाग विभेद, अभी जो चलने वाले हैं उनमें भी कुछ धरती के ऊपर है, कुछ पानी में है और कुछ आकाश में। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, पानी में तो मछली है, और पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी और मानव है, तो तीन जगहों पे होते हैं, तीन जगहों पे होते हैं, स्थल सेना वायु सेना और जल, तो तीन जगह पे चलती है सेना, तो तीन जगहों पे जीव रहते हैं। अच्छा आगे सुनिए, तार मध्य मनुष्य अति मनुष्य जाति अति अल्पतर अल्पतर, इतने सारे जीवों का वर्णन किया, उनमें से मनुष्य जाति अति अल्पतर, उसमें से मानुष सबसे बहुत कम है, इसका मतलब पहले मानव होना बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ मानव जन्म, मानव जन्म दुर्लभ है। हम तो मानव है ना, मानव अपने आप को मानते हैं, नहीं कोई शक है इसमें, मानव है ना, तो मानव है, लोगों को इसमें भी शक लगता है। मानव है, अब तो मानव का काम करना है, ये मानवता। भगवान श्री कृष्ण कहते ये मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मेरी भगवत गीता के अंदर जो शिक्षा है ये मानव जाति के लिए है। मानवाः ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मानव जाति के लिए है। और कहां की मानव जाति के लिए, जहां भी मानव है, जहां भी मानव जाति है वहां के लिए, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो और किसी भी समय, मानव के लिए ये हमारी सदा के लिए एक ही बात रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। वो दूसरी बात है कि ब्रह्मा जी ने जब पशु पैदा किए तो चिल्लाते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा भूख लगी है क्या करें, भूख लगी है क्या करें, बोला तो जो मिले जहां मिले जब मिले खाओ, जो मिले जहां मिले जब मिले खाओ। तो बकरी को जहां मिलता है वो खाता है, ऊंट को जहां मिलता है खाता है, चलता है फिरता खाता रहता है। तो आदमी जब बन गया तो आदमी ने कहा बाबा हमको भी भूख लगी ये सब खा रहे हैं, कहा आप नेम से खाओ, सुबह खाओ शाम खाओ बस। मानव को बोला दो टाइम खाओ, सुबह शाम खाओ। कुछ साल तो मानव अच्छी तरह से दो टाइम खाता था, फिर मानव के मन में विचार आया ये कोई देखो ये नाइंसाफी है, ये तो ये भगवान ये ब्रह्मा जी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, पशु जब चाहे तब खाएं, हम कोई पशु से कम है क्या, हम भी हर वक्त खाएंगे, हम भी हर वक्त खाएंगे, जब चाहें, जब चाहेंगे तब गोलगप्पा खाएंगे, जब खाएंगे तब छोला पूरी खाएंगे, जब चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं, हम कोई कम है पशु से, चलते हुए खाते। भोजन केवल बैठ के खाना चाहिए, केवल खड़े हुए चरणामृत लेने का अधिकार है हमको, भगवान का चरणामृत खड़े हुए खाना है, बाकी कोई चीज खड़े हुए खाना उसको पशु बोलते हैं, वो पशु श्रेणी में आता है। आप देखो सारे खड़े हुए खा रहे हैं कि नहीं, फिर मैं इसलिए कहता मानव कहते हैं लेकिन मानव है नहीं, दो पशु वाले, दो पांव वाले पशु बहुत ज्यादा है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं बॉम्बे में, हरिदास, बड़ा हरिदास, बंगाल से है, उसका आश्चर्य यह है उसको बताओगे का पासपोर्ट बनाओ, तो उसने बनाया नहीं, बोला बना क्यों रहा, बोला मेरे को पता नहीं मेरे बाप का नाम क्या है, तो पासपोर्ट बाप का नाम लिखना पड़ेगा ना, मेरे को पता ही नहीं कि मेरे बाप का नाम क्या है, मैं तो ऐसे आवारा था गली में घूम रहा था। प्रभुपाद ने कहा मेरा नाम लिखो तुम्हारे पिताजी नाम की जगह, प्रभुपाद का नाम लिख के उसने पासपोर्ट बनाया था और बाहर गया था। वो हरिदास जब वहां था तो प्रभुपाद बॉम्बे में ट्रांसलेट करते थे रात को, तो कुत्ते बहुत घूमते थे जंगल थी, तो इसका ड्यूटी थी तो रात को कुत्तों को भगाए, तो बड़ा खुश था, रात को बस बैठा होता था 12 बजे से 1 बजे प्रभुपाद उठ के कुत्ते भगा रहा। प्रभुपाद जब जाने लगे तो कहा कि अब प्रभुपाद आप जा रहे हैं मेरी सेवा खत्म हो गई, बोला नहीं नहीं अब तुम दो पांव वाले पशुओं को भगाना, या बदमाश आएंगे दो पांव वाले बहुत पशु यहां आएंगे, अभी कुत्ते तो ठीक है चार पांव वाले, दो पांव वाले कुत्तों से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हारी सेवा ये है तुम मंदिर में रख देखना, दो पांव वाले पशु आए तो उनको भगा देना। तो बहुत सारे आकर बदमाश आते हैं ना मंदिरों के अंदर भी, और विशेष एक काम करने आते हैं जूते चुराने आते हैं, जूते चुराने वालों का भी स्पेशल मंदिर में रोज जाने का भी नियम है, उनका भी रोज जाने का नियम है। हनुमान के बंदर देखे कुछ अंग्रेज कलंदर देखे, दया और धर्म के मंदिर देखे कुछ पापी उनके अंदर देखे, बहुत से लोग रोज रेगुलर मंदिर में जाते हैं लेकिन क्यों जाते हैं, चप्पल चुराने के लिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। भगवान के सामने मंदिर में एक पेटी रखी होती है दान पेटी, उसके ऊपर ताला लगा होता है, देखा है भगवान के आंखों के सामने पेटी है फिर भी ताला क्यों लगाते हैं, वहां से भी उठाने के लिए कुछ लोग विशेष आते हैं, वो कहते हैं भगवान का उठाने से तो सबसे अच्छा है प्रसाद के रूप में है। कैसे लोग हो गए देखो दुनिया में। तो बात ये कर रहे थे मानव अति अल्प है, बहुत कम है मानव, मानव कम है बहुत। अब आगे महाप्रभु कहते हैं उन मानु तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर तार मध्य मलेच पुलिंद बौद्ध शबर। ये मानव तो कम है, उसके अंदर में नीच जातियों के ऐसे लोग जो पशु के स्तर के जीते हैं वो तो बहुत है। ये नाम चार लिखे हैं लेकिन भागवत में तो बहुत लंबी लिस्ट है, पुलिंद है, पुलकास है, ये जितने भी है जो नाम में मानव है लेकिन कम पशु, काम पशु जैसे। जो जंगली लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, पशु को मारते हैं, खाते हैं, पशु जैसे जीते हैं। और यहां तक कि एक जगह प्रभुपाद ने लिखा है कि लोग तो आदमी को खाते हैं और अपने दादा को मारकर और उसका मांस खाकर उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, और अफ्रीका के जंगलों के अंदर लोग अपने पूर्वजों को मार देते हैं। ये तो बड़ा डर लगता है, लेकिन आजकल इससे ज्यादा घिनौना पाप जो कर रहे हैं, अपने बच्चे को पैदा होने से पहले मारने का जो काम चल रहा है, ये तो बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है। ये सब कर रहे हैं, चारों ओर कर रहे हैं, खुलेआम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना खुलेआम हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या आदमी कर सकता है ज्यादा अपराध हो रहा है। तो ये आदमी मानव कैसे काम, इसको मानव कैसे माना जाएगा? अरे मानव तो वो है जो दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाए, ये तो दूसरे को मार रहा है तो मानव कैसे हो गया? ये तो असुरी जोनियां होती हैं जो 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 मानव की हत्या करते हैं, खा जाते हैं उसको। तो यहां महाप्रभु कहते मानव तो है कम, पहले तो मानव कम है, उन मानव में भी बहुत सारे तो पशु के स्तर के ऊपर है। क्या काम करते हैं? खाना पीना, आहार निद्रा भय मय शून्य पशु भी समाना, चार ही काम करते हैं। खाने के लिए चिंता होती है, सोने के लिए कोई जगह चाहिए, भोग करने के लिए कोई चाहिए, और फिर अपने रक्षा के लिए कुछ न कुछ साधन करते, बस इसके अलावा और ज्यादा कोई काम नहीं करते। वैसे आप पूरे काम देखो जाके कोलकाता में लोग काय के लिए काम कर रहे हैं, उनसे पूछो ये चार कामों के लिए कर रहे हैं। खाने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए कोई जगह चाहिए, यही दो काम करते हैं। एक आदमी का मैं रोज कथा में जाता था, मैंने देखा एक आदमी पीछे रोज आके बैठता था। तो हमने पूछा, भाई तुम कथा में रोज आते हो? कथा में रोज आता हूँ, थोड़ा लेट तो आता हूँ, पीछे ही बैठता हूँ, क्या करते हो? बोला, पर जो सुख मेरे को कथा में एक तो ये मिलता है कि मेरे को दो घंटे अच्छी नींद आती है यहाँ, और फिर यहाँ फ्री में भोजन प्रसाद बढ़ता है, ये मेरे को मिलता है, ये दो कथा के बड़े लाभ मैंने लिए। तो बोले, दुनिया में लोग दो चीजों के लिए परेशान है, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, मकान सोने के लिए जाइए, और रोटी, ये दोनों के, ये दोनों तो यहाँ कथा में मिलते हैं, फिर हम गाय के लिए परेशान हूँ, यहाँ के सो जाता हूँ और भोजन कर लेता हूँ। लोग सारे परेशान रोटी के लिए और सोने के लिए, वो तो मुफ्त में मिल रहा है मंदिर में। हाँ, तो रोज कथा में आता हूँ, कथा सुनते बोले उससे मुझे पता कुछ नहीं, मैं सोता हूँ यहाँ और फिर प्रसाद खाता हूँ, फिर चले जाता हूँ। तो प्राय लोग दो ही स्तर के ऊपर काम करते हैं कि पैसे, खाना कैसे, हमको सोने के लिए कोई जगह चाहिए, घर लेना है, रिकाई के लिए लेना, सोने के लेना, सुनो घर के ऊपर सो जाओ, कौन मना करता है? बहुत जगह पृथ्वी इतनी खाली पड़ी है, पृथ्वी कहीं भी सो जाओ, कोई मना थोड़ी होगा, नहीं नहीं एक माँ नहीं सोऊंगा, घर चाहिए सोने के लिए। क्यों भाई घर चाहिए? भोग करना पड़ेगा ना, बाहर ऐसे खड़ा रहेगा तो भोग कैसे करेगा? पैसा कहाँ छुपा के रखेगा? अलमारी के अंदर बहुत सी ड्रेस है ना, जमा के रखनी पड़ेगी ना, बाहर सोएगा तो कहाँ रखेगा बेचारा? जितनी ड्रेस है ज्यादा उतने जन्म ज्यादा लेने पड़ेंगे। वह आसान से जीर्णान यथा व्याय ये शरीर कपड़े की तरह है, जैसे आदमी एक पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनता है, ऐसे ये जीव ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, तो जितने ज्यादा कपड़े होंगे उतने ज्यादा जन्म लेने पड़ेंगे, हमारा इसका भावार्थ ये है। इसलिए ब्रह्मचारी एक धोती धोया, रात को सुबह पहना, झंझट खत्म, ज्यादा कपड़े ज्यादा परेशान। तो मानव पहले कम है और मानव में भी सभ्य मानव, फिर लिखा है वेद निष्ठ मध्य एकाधा वेद मुख्य माने, बाकी जो ये पागलों को छोड़ के, पशु जैसे लोगों को छोड़ के, जो जो लोग कम से कम आर्य हैं, जो कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं, उनमें से आधे तो ऐसे हैं जो जो मुख से कहते हैं वेद को मानते हैं लेकिन चलता उसके ऊपर एक भी नहीं। नाम के तो बहुत से मानने वाले हैं लेकिन चलने वाला एक भी नहीं। जैसे आप कहें कलकत्ते के अंदर, आप कहेंगे ना भाई जितने लोग रह रहे हैं अपने आप को हिंदू मानते हैं, इसका मतलब सनातन धर्म को मानने वाले, लेकिन उनमें से 90% से ज्यादा तो धर्म की एक बात को मानने के लिए तैयार नहीं, धर्म के ऊपर चलने वाले नहीं है, नाम के हिंदू है। जैसे हमने कहा कभी वो अमेरिका में कोई भक्त हमारा गीता लेके किसी को कहा कि आप गीता लीजिए, हिन्दुस्तानी आ रहा था, एक हाथ में बोतल थी एक हाथ में सिगरेट थी, फिर भी उसने कहा ले लीजिए तो वो ऐसे जनोई निकाल के दिखाते थे, देखता नहीं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, गीता पढ़ा हुआ है, तुम गीता पढ़ा हुआ है, काम क्या कर रहे है? बोले शराब पी रहा है और सिगरेट पी रहा है। जरा ऐसे जनोई दिखाता है, एक आधे बोतल पकड़ा हुआ। तो इसको बोलते हैं नाम के वेद के ऊपर मानने वाले हैं लेकिन वेद के ऊपर चलने नहीं है। और फिर उस हालत में पियो, ए माता जी बंद कर दो इसको, मोबाइल को चुप करा के रखना चाहिए थोड़ी देर के लिए, साइलेंस मोड में रख दो बेटी, काम दुनिया के चलते रहेंगे। हरे कृष्ण। कल युग ने देखा कि लोग बहुत कथाओं में जाने लगे हैं आजकल, और ये ज्यादा कथाएं सुनेंगे हो सकता है साधु बन जाएं। तो उसने अपना आदमी भेजा जापान में, कहा तुम आविष्कार करो। क्या? बोला मोबाइल सबकी जेब में रख दो, कथा में जाएं तब भी वहां से डिस्टर्ब जरूर उसको करना, ये कलयुग का आविष्कार है। और उसने लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए स्पेशली कथा में जेब में रखने के लिए भेज दिया। हमको सावधान होना पड़ेगा। और उसी जापान ने बनाया तो मोबाइल, लेकिन हमको सिखाने के लिए हो। एक बार भगवान ने यमराज को कहा जाओ पान लेके आओ, जा पान लेकर आ, वो समझा नहीं, वो जापानी लेके चला गया। समझ सुनामी में पूरे का पूरा जापानी लेके आया। तो ये सब बनाना बहुत आसान है लेकिन एक मिनट में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसको किसी ने सोचा भी नहीं था। जापान ले आओ, तो पान जापानी लेके आया पूरे का पूरा। तो जिस चीज को हम अपना मान के बैठे कितनी देर में सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है? इस दुनिया में हो रहा है ना, कहीं और तो नहीं हो रहा है? सब कुछ अपना मान के बैठे हुए लेकिन कुछ भी कहीं रहेगा उसका भरोसा नहीं। तो ए नाम के मानने वाले बहुत है, चलने वाले उसके बहुत ऊपर बहुत कम है। जो थोड़े बहुत चलते हैं वेद निष्ठ पाप करे धर्म नहीं गणे, ये सब लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वेदों के ऋषियों की संतान है, नाम भी उनके चतुर्वेदी होगा, लेकिन काम क्या होगा? गणेश मीट शॉप, गणेश मीट शॉप, धंधा क्या है? मीट शॉप। और चतुर्वेदी जी का जो है वो ये परमट शॉप है, चतुर्वेदी परमट शॉप, चार वेद के परम वाला शराब बेच रहा है। दिख रहा है ये सब नाम ऐसे लिखे हुए कि नहीं लिखे? काम क्या है उनके? तो ये महाप्रभु कह रहे काम पाप करे वेदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और ये भी नहीं जानते हैं, धर्म के बारे में जानते नहीं, लेकिन अपने आप को कहते हैं कि हम चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, पंचवेदी हैं, सातवेदी हैं, कुछ पता नहीं क्या कह रहे, लेकिन काम क्या है? अपने आप को कहेंगे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं लेकिन काम सबका अधर्म का है। धर्मचारी मध्य बहुत कर्म निष्ठ, कम से कम जो वेद मानने वाले हैं ना जिसमें हम लोग जाते हैं उनमें से प्रायः लोग जो है वो कर्म निष्ठ हैं, कर्म में लगे हुए। काय कर्म का अर्थ क्या है? मेहनत करेंगे पैसा कमाएंगे। क्या करोगे पैसा कमा के? भोग करेंगे। भोग से ज्यादा पैसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर कोई धर्म और काम करेंगे, अस्पताल खुला देंगे, कोई धर्मशाला खुलाएंगे, बावड़ी खुलवा देंगे। ऐसे धर्मनिष्ठ, ये कर्मनिष्ठ है। तो प्रायः जो थोड़े बहुत धर्म के ऊपर चल रहे हैं वो भी केवल यही काम करने में वो लगे, चैरिटेबल चैरिटेबल चैरिटेबल, वो कर्मनिष्ठ है। वो अच्छे हैं पशुओं से, वो अच्छे हैं उन मूर्खों से जो जंगल में रहते हैं, वो अच्छे हैं जो धर्म का नाम लेते हैं लेकिन धर्म के ऊपर चलते ही नहीं, उनसे अच्छे हैं कर्मनिष्ठ। तो वो कर्मनिष्ठ के बाद भी धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे कई लोग जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अपने काम में सुबह से शाम लगे हुए, पैसा कमाते हैं, स्वयं तो बड़ा अच्छा सुख से रहते हैं, भोग करते हैं, लेकिन दान पुण्य का कार्य भी करते हैं, वो कर्मनिष्ठ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ऐसे लिखा है। लेकिन उनमें से कोई एक होता है, कोटि में से, करोड़ों में से कोई एक होता है जो ज्ञाननिष्ठ होता है। ज्ञाननिष्ठ का मतलब जो ये जानता है कि संसार एक दिन छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं ये सदा रहने वाला नहीं है, मेरे को तो भगवान को जानना चाहिए। ज्ञानी का मतलब भगवान को जानने की जिज्ञासा करने वाला, लेकिन उसका भी उद्देश्य होता है कि भगवान, बस भगवान क्या है उसमें जाके मेरे को लीन होना है। तो ज्ञानी का लक्ष्य होता है ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन होना। तो कोटि कर्मियों में, कर्मनिष्ठ में एक कोई ज्ञानी होता है जो ज्ञान जानता है। और आगे कहते हैं मारो कोटि ज्ञानी मध्य है एक ज्ञान जन मुक्त, कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन उसमें से मुक्त कोई एक आधा होता है, सब मुक्त नहीं होते। और प्रभुपाद ने इसके अंदर लिखा है भागवत के दसम स्कंध से, बहुत से अपने आप को समझते हैं कि हम मुक्त मानी ना, अपने आप को मुक्त मानते हैं, लेकिन भगवान के श्री चरणों का अपमान कर देते हैं। कहते भगवान को आंख नहीं है, कान नहीं है, भगवान के चरण नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, पांव नहीं है। अरे ऐसा भी कोई भगवान होता है? भगवान इसी किसी आदमी की प्रार्थना करनी हो, कहना चाहिए भैया आप बड़े अच्छे हो, आपकी दोनों आंखें नहीं है, आपके दोनों कान नहीं है, आपके दोनों पांव नहीं, इसका मतलब तुम अंधे हो, तुम काने हो, तुम लूले हो, तुम लंगड़े हो, ये किसी की प्रार्थना है क्या? ये प्रार्थना अच्छी लगेगी क्या? किसी आदमी को कहो कि आप सेठ जी बहुत अच्छे हो, आपके भगवान कोई आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, अच्छा लगेगा ये प्रार्थना? और ऐसी प्रार्थना करते हैं जो जो ज्ञानी लोग हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, निराकार है, ना हाथ है, ना पांव है, ना नाम है, ना कान है। तो फिर भगवान कहता है ये तो मूर्ख मेरे को खाना लूला लंगड़ा बना रहा है, ये क्या कर रहा है ये? प्रभुपाद एक प्रवचन में ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होगा क्या कि तुम काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, ये कोई प्रार्थना हुई? तो है वो मुक्त कैसे होंगे जो भगवान के अंग ही, भगवान के चरणों का अपराधी है, वो मुक्त कैसे होंगे? वो पतपति अधम अधो वापस नीचे आगे गिरते, आइए अंदर आके प्रवेश कीजिए, बैठिए। कोटि मुक्त मध्य, अब सुनिए, कोटि मुक्त उसमें से भी एक ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है, ऐसे मुक्त जो हो गए उनमें से कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ। अभी जब देखो ये कहीं दुर्लभ शब्द नहीं आया, मानव के सब जीवों में मानव दुर्लभ है एक बात, बाकी कर्मनिष्ठ बहुत हैं कोई बात नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ बहुत है कोई बात नहीं, मुक्त बहुत है कोई बात नहीं, लेकिन दुर्लभ कौन है? एक कृष्ण भक्त। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि करोड़ मुक्त, इसका मतलब मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है, भक्ति शुरू ही होती है मुक्ति के बाद। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब है संसार के बंधन से मुक्त होना। और भगवद गीता में ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मान सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। जब ब्रह्म भूत स्तर के ऊपर कोई पहुंचेगा उसके बाद मेरी पराभक्ति प्राप्त करेगा। तो भक्ति कब मिलती है? मुक्ति के बाद। लोग सब मुक्ति मांगते हैं संसार में, लेकिन उनमें से कोई एक आधा मुक्त होता है, लेकिन ऐसे करोड़ों मुक्त होते हैं उनमें से कोई एक कृष्ण भक्त होता है, ये दुर्लभ है ना। अब आप क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है। और ये कौन बता रहा है? ये भगवान साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन कितना दुर्लभ है, कृष्ण भक्ति उसमें कितना मिलना मुश्किल है। करोड़ों करोड़ों जीवों में कोई एक मुश्किल से दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्ति मिलना। तो हमको पहले से ये सोचना चाहिए कितना हमारे भाग्य है कि मानव जन्म मिला है। और फिर कृष्ण भक्ति प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सरलता से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम लाए और परंपरा के अंतर्गत प्रभुपाद ने बहुत सरलता से सबको दे दिया। तो कितना बड़ा ये उत्तम कार्य, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। फिर महाप्रभु कहते हैं भुक्ति मतलब कर्मी, कर्मनिष्ठ भोग के लिए, मुक्ति ज्ञानी और सिद्धि योगी, ये तीनों कामी, इनकी इच्छाएं होती हैं। कामी क्या चाहता है? कर्म, कर्म वाला क्या चाहता है? फल भोग करने के लिए। ज्ञानी क्या चाहता है? ब्रह्म में लीन होना। सिद्ध क्या चाहता है? दुनिया को चमत्कार दिखाना। इन सबकी इच्छा है, इसलिए ये जिसकी इच्छा होती है वो शांत नहीं हो सकता है। चाह मिटी, अगर चाह नहीं रहेगी, चाहे ना मतलब इच्छा कामना नहीं रहेगी, चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, फिर बेपरवाह हो, कोई परवाह नहीं है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शैन, वो शाह का शाह, कुछ नहीं चाहिए वो ही राजा है, जिसको चाहिए वो तो भिखारी। इस दुनिया में जिस जो चाह दुनिया को कुछ मांग रहा है वो तो भिखारी। गरीब इतना दरिद्र नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा दरिद्र वो है जिसके पास तीन पीढ़ियों का है फिर भी परेशान है। जो गरीब तो वो हुआ ना, वो तो दरिद्र नहीं है, जिसके पास नहीं है वो तो दरिद्र है, लेकिन दरिद्रतम कौन है जिसके पास तीन पीढ़ियों का है फिर भी परेशान है? भिखारी तो वो कहा जाएगा ना। साधु की कुटिया पे और सेठ की कोठी में क्या अंतर है? साधु की कुटिया के ऊपर लिखा होता है आइए स्वागत है, और सेठ की कोठी पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान, दोनों में दिन रात का अंतर है कि नहीं है? उसकी कुटिया में कुछ भी नहीं है फिर भी बोलते आइए आइए, और वहां भगवान ने सब कौन रात एक महात्मा बता रहा था, सेठ माफ करना मुझे, आपकी थाली में कटोरियां ज्यादा हैं, गरीब के पास रोटियां ज्यादा है, वो रोटियां देता है तुम केवल कटोरियां देते हो। 15-20-25 कटोरियां हैं गिनते रहो, लेकिन रोटी तो कभी कभार आएगी। गरीब के पास रोटियां ज्यादा हैं और सेठ के पास कटोरियां ज्यादा हैं। कहने का भाव ये है कि दरिद्र कौन है? ये सब भिखारी है, दुनिया से मांग रहा है तो काम, और कृष्ण भक्त निष्काम है, उसकी कोई कामना नहीं है। क्यों नहीं है कामना? प्रभुपद ने कहा भगवान है कृष्ण भक्त नोज दैट हिज फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर इन ऑल रेस्पेक्ट इज कृष्ण। कृष्ण भक्त को ये मालूम है मैं काय के लिए चाहा करूं, मैं क्यों इच्छा करूं, भगवान मेरा बैठा है ना मेरी देखभाल करने के लिए, मैं क्यों चिंता करूं, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। हाँ, ये शब्द बहुत सुंदर लिखा है, कृष्ण भक्त निष्काम क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है स्वर्ग सर्वभूतानां, मैं सबका हितेशी हूं। तो जब ये जानता है भक्त, कृष्ण भक्त ये समझता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरी रक्षक हैं, और जो मेरी जरूरत है वो पूरी कर लेंगे। और उन्होंने ये वचन किया है कौन थे प्रतिजाने नमे भक्त प्रणश्यति, और कृष्ण ने यही कहा है कि मेरे भक्त बनो। भगवद गीता में एक ही बात भगवान ने कहा है मेरे भक्त बनो, और कहा गीता पढ़े और भक्त नहीं बने इसका मतलब भगवान की बात नहीं मान रहा है, और गीता पढ़े और भक्त नहीं बनाए तो भी भगवान की बात नहीं मान रहा है। गीता तो पढ़ रहे हैं लेकिन भक्त न बन रहे हैं न बना रहे हैं, इसका मतलब उस कैटेगरी में आते हैं धर्म माने कि मैं धर्मी हूं लेकिन धर्म के ऊपर नहीं चले। भगवान ने क्या कहा भगवत गीता, मैं भक्त बनू ना, और भक्त पूरा परिवार साथ मिलकर रोज भक्ति करनी चाहिए, रोज घर में भोजन सबके लिए बनता है, सब भोजन साथ खाते हैं तो बैठ के भगवान का कीर्तन रोज साथ करना चाहिए, घर में पूरे परिवार को बैठ के भक्ति करनी चाहिए, और बच्चों के ऊपर संस्कार तब पड़ेंगे जब बड़े बैठ के भक्ति करेंगे, तो बच्चे उनको देख के उनके अंदर ये अपने आप बचपन से ही संस्कार पड़ जाएंगे। हर घर में आके अंदर भगवान का मंदिर होना चाहिए, और आप लोग सब मंदिर में नहीं जा सकते, कलयुग में सब लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं रोज का, इसलिए हर घर में अपना मंदिर होना चाहिए, घर का मालिक भगवान होना चाहिए, घर में मंदिर होना चाहिए, और घर के अंदर जो रसोई पकती है वो भगवान के भोग लगाने के लिए बनानी चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए, और जब तक भगवान को भोग लगता है तब तक परिवार वालों के बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। वैसे भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें लिखा है गृहस्थी ग्रस्त परिवार में फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल है, वहां प्रभुपाद ने चार बातें लिखी है कि अगर ग्रस्त ये चार बातें करेगा तो अपने घर में भी रह के वो भगवान की भक्ति कर सकता है। पहली बात है घर में भगवान के मंदिर को स्थापित करे, ठाकुर जी का फोटो चित्रपट रखे अथवा ठाकुर जी को बिठाए, जैसे यहां लल्लू गोपाल जी बैठे हैं, जैसे ठाकुर जी को घर में विराजमान करना, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना दो, भगवान को भोग लगाना और प्रसाद खाना तीन, और भगवत गीता भागवत आदि पुस्तकों का श्रवण करना चार। ये चार काम करने वाला ग्रस्त भगवान का भक्त है। अगर ये काम घर में नहीं होते हैं वो तो धर्मचारी तो है लेकिन धर्म को नहीं जानता, इसका मतलब भगवान के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो हर ग्रस्ती के घर में ये चार काम होना चाहिए। भगवान का ये भगवत गीता के 13वें अध्याय के पौपट में है जहां ज्ञानी के लक्षण है अमानी त्वम मदम भीतम, उसके अंदर ग्रस्त का जहां वर्णन आता है वहां ये चार चीज प्रभुपाद लिखा है हर घर में होनी चाहिए। और आप लोग जिस परिवारों से आते हैं आपके घरों में पहले जमाने में ये चार चीजें हुआ करती थी। ये दूसरी बात है कि हम समय के साथ उसको भूल गए हैं और अब कैसे भी कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के द्वारा हमको याद कराया जा रहा है, लेकिन ये चीजें हर घर में हुआ करती थी। घर में भगवान जी का ठाकुर जी का मंदिर कीर्तन प्रसाद ये हमारे घरों में नियमावली है, कोई ये नई चीज हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमको ये प्रचार करना चाहिए दूसरों को, अगर हमको सुख मिला है तो दूसरों को देना चाहिए। अगर हम दूसरे किसी को नहीं देते हैं तो हम कंजूस हैं, हम कंजूस हो गए। हमारे पास इतनी अच्छी चीज हम दूसरे को नहीं देते हैं तो कंजूस है, तो कंजूसी कोई अच्छी चीज नहीं है, उदारता होना चाहिए। तो भगवदगीता में भगवान कहते हैं प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। जो मेरे इस भगवदगीता के संदेश का प्रचार करता है वो मुझे प्रिय है, उससे ज्यादा कोई न कभी प्रिय था न भविष्य में कोई प्रिय होगा। तो भगवान को प्रिय नहीं होना चाहते क्या? किसको प्रिय होना चाहते हैं संसार में? भगवान को प्रिय होना है तो भगवान उससे प्रेम करने के लिए तैयार है जो भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करते। तो आप लोग तो निश्चित रूप से रोज कहीं ना कहीं प्रचार करने, अभी रोज समय नहीं मिलेगा ग्रस्त की कोई बात नहीं, आप सप्ताह के अंदर 2-3 घंटे हर एक भक्त को बोलो तुम्हारा टाइम दे दो, हमको तुम्हारा धन नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम चाहिए। इस टाइम में तुम इस एरिया मानो इस बिल्डिंग के अंदर 2 घंटे तुम्हें प्रचार के लिए जाना है हफ्ते में। ऐसे एक एक आदमी 2 घंटे अपने निकाल के अलग अलग जगहों पे प्रचार करे और उस जो आपका लीडर है उसके पास बोलो ये मेरा टाइम दान है 2 घंटे, बोलो कहां जाऊं क्या सेवा करो। समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय का सेवा में समय चाहिए। वैसे भी हरे कृष्ण जपते हैं तो भगवान को यही कहता है ना कि हमको सेवा में लगाओ, और सबसे बड़ी सेवा है प्रचार में जाना, और जो प्रचार में नहीं जाता है इसका मतलब मंत्र जप रहा है अभी तक उसको नौकरी मिली नहीं है, एप्लीकेशन रोज डाल रहा है लेकिन अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली है। तो ऐसा कोई रोज आदमी जाए पर्ची डाल के आए कि मेरी एप्लीकेशन है मेरा ये क्या है कौन सा पत्र बोलते हैं आवेदन पत्र है क्या, नौकरी चाहिए लेकिन नौकरी मिलती नहीं है, कितना आदमी परेशान होता है। हमको कोई परेशानी, हरे कृष्ण सो खाओ पियो, तो हमारे को नौकरी नहीं मिली है फिर भी कुछ बैठे। अरे नौकरी मिलनी चाहिए ना, तो रोज नौकरी तो मांग रहे हैं, तो सबसे अच्छी नौकरी जाके प्रचार करो। और हर एक व्यक्ति आप में से कम जो दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने की मन का भाव है कहीं न कहीं जाके प्रचार करना शुरू करना चाहिए। जब आप प्रचार करोगे खुद तब आपको पता लगेगा कि भगवान कितनी आपके ऊपर कृपा कर रहा है, आपकी वाणी में कितनी शक्ति दे रहे हैं और आपको कैसे एम्पावर करता है, कैसे लोग आपके प्रचार से प्रभावित होंगे। एक आदमी ने माला जपी तो आपका हृदय फूलेगा, हाँ एक आदमी को मैंने आज भगवान का नाम सिखाया। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी भक्ति में कितना आनंद है। प्रचार नहीं करोगे तो खड़े हुए पानी की तरह आस्ते आस्ते आपको लगेगा कौन करेगा रोज, अरे कृष्ण हरे राम बहुत दिन हो गया अभी भी करना पड़ेगा क्या। बाहर प्रचार नहीं करोगे तो अंदर में सुख नहीं आएगा। आनंद का अनुभव तब होता है जब ऐसी जगह में जाके प्रचार करते हैं जहां लोगों को कुछ पता नहीं है उसके बारे में, और दया और करुणा का हृदय ले जाकर उनको कृष्ण भावना का प्रसाद दोगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। कृष्ण प्रेम चाहिए तो महाप्रभु की कृपा चाहिए तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, और महाप्रभु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, और नित्यानंद की प्रभु की कृपा होगी तब महाप्रभु की कृपा मिलेगी। और नित्यानंद प्रभु तभी कृपा करते हैं जब कोई जगाई माधाई जैसे लोगों को जाके प्रचार करते हैं। तो इसका मतलब हमको अगर कृष्ण भक्ति चाहिए तो ये इसकी परंपरा ये है कि हमको जाके प्रचार करना चाहिए और गृहस्थों को प्रचार करना चाहिए। लाल कपड़े वाले प्रचार करने जाएंगे लोग डरेंगे, बोले तो हमारा आदमी भगा के जाएगा, इनसे डरते हैं, इनको प्रणाम करेंगे इनको दान दक्षिणा देंगे लेकिन डरते हैं अंदर से कि ये कहीं हमारा दिमाग बदल देगा। ये इनसे लोग डरते हैं थोड़े, ये प्रचार करने जाते हैं इनका सम्मान करते हैं इनको साधु मान के प्रणाम करते हैं। किसी ने मुझे कहा कि देखो आपका क्या विचार है, एक लड़का भक्तों के संग में आया और ब्रह्मचारी बन गया उसका दायित्व है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, तो लाखों लोग हैं कोई एक आधु साधु बन गया है और उसी को तुम घर में ला के उसकी पूजा करता है उसको खिलाता पिलाता है और उसी को दान दक्षिणा देता है, इसका मतलब उसने अच्छा ही काम किया ना, वो साधु बना तो अच्छा हो गया ना। दूसरे का बेटा साधु बने बड़ा अच्छा लगता है हम उसकी पूजा करते हैं, हमारा बन गया तो बड़ा घाटा हो गया। इसलिए प्रचारक गृहस्थी को होना चाहिए और पति और पत्नी दोनों जाके प्रचार करें तो लोगों को ये भय नहीं होगा कि हमारा कुछ जाने वाला है। तो क्योंकि ग्रस्तों में प्रचार करने के लिए एक मैं जानता हूं परिवार जाता हूं मॉरिशस, दो बेटे हैं पति पत्नी है, बेटा मृदंग बजाता है, एक हड़ताल बजाता है, पति गाता है, पत्नी साथ पुस्तक ले जाती है, पूरा परिवार है कहीं न कहीं अपना प्रोग्राम करते सेवा। भगवान की कृपा से दोनों ऑफिसर हैं, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन प्रचार करने रोज जाते। तो गृहस्थी प्रचार करने घर घर में जाते, ब्रह्मचारी को घर में आने की इच्छा भी नहीं होती है, ये तो कैसे कि गुरु का आज्ञा है इसलिए जाते हैं प्रचार करने, नहीं तो इनका इनको बहुत मुश्किल है ये प्रचार करना, और ये प्रचार करेंगे तो भी ऐसा करेंगे जो आपको बहुत कड़वा लगेगा, क्योंकि इनका जो 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 दृष्टिकोण है वो दूसरा है। लेकिन सारी दुनिया के अंदर ब्रह्मचारी तो कम है, गृहस्थ ज्यादा है, कृष्ण भावना सबको देनी है, तो आपके ऊपर दायित्व ज्यादा है इस प्रचार कार्य करने का। और विशेष रूप से माता लोग अगर प्रचार करके माता मंडल कृष्ण भावना बना के और प्रचार करें तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी और ज्यादा पड़ेगा, ये निश्चित रूप से इनकी आवश्यकता है, लाके इनको बिठाना चाहिए। प्रभुपाद जी यहां जब कलकत्ता में प्रचार कर रहे थे तो वहां उस वक्त एक ब्रह्मचारी था, वो ब्रह्मचारी कहता है मुझे प्रभुपाद ले जाते थे, मुझे आता नहीं था कुछ, मैं तो शिक्षक था, प्रभुपाद बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन क्योंकि वो ग्रस्त थे मेरे को ले जाके ऊपर बिठाते थे, वो ब्रह्मचारी बोलता है, लेकिन प्रभुपाद प्रवचन प्रभुपाद करते थे लेकिन मेरे को सिर्फ बिठाते थे ताकि लोग समझें कि साधु आए, क्योंकि लोगों को साधुओं को सम्मान होता है, सम्मान साधु का करते हैं, लेकिन ऐसे प्रभुपाद वो ब्रह्मचारी कहता है मुझे ले जाते थे बुढ़िया मठ से, मुझे बिठाते थे, मैं कहता मुझे तो आता नहीं है, आप अभय बाबू आप बोलिए, पर तुम चल के बैठे रहो चुप करके, बस तुम्हारा सम्मान करेंगे लोग, लेकिन मैं प्रचार में गाते थे, प्रचार प्रभुपाद जी करते थे, सम्मान के लिए उसको ले जाते थे हमेशा, बोलता मेरे को लेकर ऊपर बिठाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी प्रचार करते थे। तो कैसे हमको ये ब्रह्मचारियों को लाना चाहिए, लोग इनका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रचार आप करेंगे तो लोगों को डर नहीं लगेगा, ये प्रचार की बहुत जरूरत है, इसको समझ में आना चाहिए किसी को असल में कि आप लोगों का दायित्व है प्रचार करना। आप किसी घर में जाएंगे माता जी लोग को कोई परेशानी नहीं है, ये पुस्तक वितरण करना है कोई भी, इनको थोड़ा परेशानी भी हो सकती है, आपके लिए तो कोई समस्या नहीं, इनको संग में जाना पड़ेगा, आप प्रचार शुरू करो, ये कितना महत्वपूर्ण है। मुश्किल से कृष्ण भक्ति मिलती है, ब्रह्मांड भर में से कोई भागीवान जीव उसके बाद आ गया, ब्रह्मांड भर में से कोई भागी जवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो कई लोग ब्रह्मांड में इधर से उधर धक्का, देखो ये हावड़ा स्टेशन के ऊपर कितने लोग ट्रेन से उतरते चढ़ते, कोई गिन सकता है क्या? पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं रहा है, इस दुनिया में कई मर रहे हैं कई पैदा हो रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई भाग्यवान होता है कृष्ण कृपा से साधु का संग मिलता है, और साधु गुरु की शिक्षा से कृष्ण मिलता है। तो भक्ति की लता का बीज कौन देता है? भक्ति की लता का बीज गुरु देता है, लेकिन गुरु कौन बुलाता है? कृष्ण, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है। भक्ति की लता का बीज क्या है? गुरु भक्ति की लता का बीज क्या देता है? नेम, नेम नाम नहीं, नेम, जो नेम पालन करने, ये भक्ति की लता का बीज है, साधन भक्ति की लता, और इन बीजों को इस साधन भक्ति में चेतना महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते 64 अंग है भक्ति के, ये बीज है, उसमें से पांच मुख्य है, पांच अंग मुख्य है, पांच अंग भक्ति के बीज के रूप में मुख्य है। भागवत का नित्य श्रवण करना, भगवान का घर में ठाकुर जी का श्रद्धा के साथ सेवा पूजा करना, भक्तों का संग करना, नाम का जप करना और मथुरा वास करना, ये पांच मुख्य है, ये साधन है, और साधन भक्ति का बीज है। भगवान का नाम भक्ति का बीज नहीं है, वो तो भगवत, भगवत नाम तो भगवान साक्षात स्वयं है, तो भगवान बीज नहीं हो सकता, बीज तो साधन है। प्रभुपाद ने शब्द लिखा है मेथड्स रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच वन इज ट्रेंड इन टू द प्योर डिवोशनल सर्विस इज कॉल्ड भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज क्या है? मेथड्स, चाहिए मैं एक सेंटेंस पढ़ लेता हूं आपको ध्यान में रहे कि हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम 16 माला जब तो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिखा है देखिए, method, rules and regulation by which one is perfectly trained in devotional service constitute the Bhakti Lata Bija or seed of devotional service. Methods, matlab, sadhan, name or sadhan jinke dwara bhakti mein aadmi shiksha grahan kare usko Bhakti ki Lata ka Bij kehte hain. और ये बीज नहीं मिला तो दूसरे बीज मिलेंगे, कर्म के बीज मिलेगा या ज्ञान का बीज मिलेगा और फिर उसका फल कुछ और होगा. भक्ति की लता का बीज क्या है? नेम, भक्ति के नेम. और फिर भक्ति की लता को कोई सहारा चाहिए ना. भाई लता तो अपने आप नहीं चढ़ती, किसी पेड़ के ऊपर सहारा चाहिए. तो कौन सा पेड़ है जिसके ऊपर भक्ति की लता आरोहण करेगी या चढ़ेगी? भौतिक जगत का कोई भी पेड़ भक्ति की लता को आरोहण करने के लिए नहीं हो सकता. तो किसके ऊपर भक्ति की लता आरोहण करती है वो एक पेड़ का नाम भी आपको बता दूं. कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण. भक्ति की लता का बीज देता है गुरु और आपको बनना पड़ेगा माली और श्रवण और कीर्तन के जल से करना पड़ेगा सिंचन. श्रवण का मतलब कथा सुनना और कीर्तन का मतलब भगवान का कीर्तन करना. ये जल है जिससे भक्ति की लता का सिंचन होगा तब वो भौतिक जगत का भेदन करेगी और आध्यात्मिक जगत में जाकर कान लपटेगी. तभी आए तद ऊपरी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण. किसके ऊपर किसका सहारा लेती है? कृष्ण चरण कल्प वृक्ष. कौन से वृक्ष का सहारा लेती है भक्ति की लता? कृष्ण चरण कल्प वृक्ष. कल्प वृक्ष करते सब इच्छा पूरी करने वाले को बोलते हैं, उसके ऊपर जाके चढ़ती है और वहां क्या करेगी? तहां विस्तरित हया फले प्रेम फला यहां माली सींचे नित्य सर्वम आदि जल. वहां फल उसमें कृष्ण प्रेम का लगता है. लता में फल लगेगा गोलोक वृंदावन में, लेकिन माली भौतिक जगत में उसका श्रवण कीर्तन का जल तब भी देता रहेगा. तो ये आपको बताने का आज ये उद्देश्य ये था कि आपको मानव जन्म ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कृष्ण भक्ति ज्ञान कर्म इन सब से ऊपर है. इसलिए अब जो प्राय लोग कर्म कांड में फंसे हुए हैं, कर्म कांड कर्म योग भी नहीं है. योग का मतलब कृष्ण संबंधी कार्य, कर्म कांड का मतलब देवी देवताओं के बीच में उलझा हुआ आदमी वो स्वर्ग का या संसार के सुख के लिए ही कोशिश करता है. वो उसका वो ऐसा है जैसे एक आदमी जेल में हो और जेल के सुपीरियर को बोले कि मेरे को एसी लगा दो, बहुत गर्मी आ गई है, या मेरे को आप ऐसे घर से रोटी बनने का प्रबंध कर लो, यहां नहीं खाता हूं. अच्छा, ये मांगना अच्छा है या ये मांगे कि मेरे को जेल से निकाल दो वो अच्छा है? ये अच्छा है ना. तो प्रायः जितनी देवी देवता की पूजा है वो हमारे को जेल के अंदर फैसिलिटी लेने की इच्छा है कि एसी लगा के दो, हमारे को कोई और प्रबंध कर दो, मिलने वाले दो चार आया करें. वो क्या है कि जेल के अंदर सुविधा चाहिए. और इसलिए कभी कभी असुर लोग देवी देवताओं की पूजा बहुत करते हैं. बहुत से लोग देवी की, असुर सारे देवी की पूजा करते थे और शंकर जी के तो रावण और हिरण्यकश्यप और ब्रह्मा जी के पुजारी बहुत है, लेकिन भगवान से ईर्ष्या करते. तो इसका मतलब असुरी प्रवृत्ति आ जाती है देवी देवता की पूजा में. क्यों आती है? क्योंकि देवी देवता की पूजा करते हैं भोग के लिए. भोग के लिए करते हैं, कुछ मिलना चाहिए ना. हम भोग के लिए करते हैं और भोग कौन करता है? भोग तो केवल भगवान करता है. भोग तारम ये तपसाम, भोग करने वाला तो भगवान अकेला है. और जब हम कहते हैं हम भोग करते हैं इस पूजा से, इसका मतलब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं. अगर भगवान ही भोग करने वाला है और हम भी भोग करने की इच्छा करें, इसका मतलब हम भगवान से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और ईर्ष्या कर रहे हैं. और जो भगवान से ईर्ष्या करता है उसी को असुर बोलते हैं. वो तो असुर हो गया ना, ईर्ष्या हो गया ना भगवान से. भगवान को भोग करना चाहिए ना उसकी. इसलिए हमारे वेद शास्त्र में कभी पाठ कोई करते हैं कृष्ण प्रीति अर्थे पाठ कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे. लेकिन प्रायः पूजा करने जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हुए लोगों से पूछो कि तुम मंदिर में क्यों जाते हैं, उनसे जाके पूछ लो, जवाब क्या देंगे कुछ बताओ? कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं ना, कुछ ना कुछ लेने ही जाते हैं. देने क्या जाते हैं उधर? दस रुपया देते हैं, उसके बदले में क्या मांगते क्या है वो भी तो पूछा करो ना. फिर भगवान इतना मूर्ख है क्या? कोई बताए कि हमें, हम धर्म के ऊपर चलते हैं, इसकी पहचान क्या है कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमने कहा अपने घर में जाके आप एक यार्ड स्टिक, आपको बता रहे हैं नियमावली, अब घर में जाके देखो कि आपके घर के अंदर छोटे बच्चे कितने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा पालन करके चरण छूते हैं, उससे पता लगेगा कि आपके घर में कितना धर्म का वातावरण है। कितनी बहुएं सास का चरण दबाती हैं, बेटे बाप के चरण, बाप पिताजी के चरण दबाते हैं, उससे पता लगेगा कि आपके धर्म घर में कितना धर्म का नियमावली है। अब जाकर घर में देख लो, बता दो क्या समाचार है। इसका मतलब हम धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। ये तो पहला धर्म है, बड़ों बुजुर्ग भगवद गीता में लिखा है, तपस्या है शरीर की, तपस्या है भगवान की, बड़ों की, बुजुर्गों की, ब्राह्मण की पूजा करना, ये शरीर का तप है। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम आचरण शौचम ब्रह्मचर्यम शरीरम तप उच्यते, ये शरीर का तपस्या नहीं करते ना। बहू को सास ने कहा, बेटी सर में दर्द है जरा दबा दो। बोला अभी टाइम नहीं है, कभी गले में दर्द हो तो मुझे जरूर बुलाना, तब तो मैं सेवा करने के लिए जरूर आ जाऊं। क्या हो गया है हमारे समाज को है? बड़े बुजुर्गों का सेवा करना, कितने बच्चे पांव पड़ते हैं आपके बताइए, क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि धर्म की शिक्षा नहीं है घर में। अगर हम बड़ों का सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे सेवा करेंगे। आप आज नहीं करोगे तो कल आप भी तो बड़े बनोगे ना, तो आप भी कौन करेगा? तो संस्कार घर में तब आएंगे जब घर के अंदर भगवान की भक्ति शुरू होगी, तब संस्कार। अब मंदिर में जाते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, पांव छूना नहीं, प्रणाम करते हैं सर में। और दुनिया के अंदर किसी धर्म में दंडवत प्रणाम का नियम है ही नहीं, केवल सनातन धर्म में दंडवत प्रणाम कोई कहीं नहीं करते। दंडवत प्रणाम केवल हमारे पास होता है, सब कुछ अर्पण भगवान को करने का, और किसी ने किसी में शिक्षा है ही नहीं। किसी भी धर्म में दंडवत प्रणाम नहीं है, हमारे पास सिर्फ दंडवत प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम और कहीं नहीं। तो कम से कम बच्चों को प्रणाम करना तो सीखना चाहिए, बड़ों बुजुर्गों को। और यह तब हो सकता है जब आप स्वयं भक्त बनेंगे और घर में ये शिक्षा देंगे, चरण छूना नहीं, पांव सर झुकाना चरणों में, ये नियमावली घरों में होनी चाहिए। और उसके लिए ये संस्कार देने के लिए ये कृष्ण भक्ति सिखाई जा रही है, ताकि संस्कारित तो हमारा परिवार हो। और एक ही भगवान की भक्ति करने से सारे ही फल मिल जाएंगे, तो फिर अलग अलग भटकने की जरूरत क्या है? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अपमान किसी का करना है। हमें जरूरत नहीं है कृष्ण भक्ति करने के बाद और किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी का अपमान करने का अधिकार भी नहीं है। हरे कृष्णा, समय हो रहा है, कथा को यहां विराम देते हैं। आपको हम कहते हैं, आप महत्वपूर्ण, आपको मानव जन्म मिला है,